आज है 18 जून दिन शनिवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूँ सुशीला सिंह। इराकी प्रधानमंत्री ने फलूजा के इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण से मुक्त होने की घोषणा।
قد وعدنا بتحرير الفلوجة وقد عادت الفلوجة الى حضن الوطن لقد
سيطرت جرمنی کی کورٹ نے پور نازی گارڈ کو 170,000 لوگوں کی ہتیا میں سہیوگ دینے کا پایا دوشی۔ حریت کے ادھاروادی دھڑے نے کی کشمیری پنڈتوں کے واپسی کی پہل، اور ویوادوں میں گھری اڑتا پنجاب کل ہوئی ریلیز، باکس آفس پر کتنا دکھا پائے گی کمال۔
چاروں کہانیاں جو ہیں کہیں نہ کہیں جڑی بھی ہوئی ہیں لیکن الگ الگ ٹریکس پہ چل رہی ہیں، لیکن فلم اتنی ریئلسٹک اور اتنی ہارڈ ہٹنگ ہے، اس لحاظ سے اڑتا پنجاب ایک بہت کامیاب فلم۔
سنیں گے فلم سمیکشا، لیکن پہلے سن لیتے ہیں مکھیہ سماچار۔
بی بی سی سماچار واتسلیہ رائے سے۔ عراق کے پردھان منتری حیدر العبادی کے مطابق عراق کی سینہ نے فلوجہ شہر کو اسلامک اسٹیٹ کے نینترن سے مکت کرا لیا ہے۔ عراقی سینہ نے اس کے لیے قریب 4 ہفتے پہلے ابھیان شروع کیا تھا۔ فلوجہ جنوری 2014 سے اسلامک اسٹیٹ کے قبضے میں تھا۔ امریکی رکشا منتری ایشٹن کارٹر نے کہا کہ اس ابھیان میں امریکہ نے عراقی سینہ کو مدد مہیا کرائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی شہر کے کچھ حصوں میں اسلامک اسٹیٹ کے لڑاکے موجود ہیں۔ عراق کے پردھان منتری نے کہا کہ اب سینہ کی نظر اسلامک اسٹیٹ کے گڑھ موصول پر ہے۔ امریکہ نے آروپ لگایا ہے کہ روس دکشن سیریا میں اسلامک اسٹیٹ سے سنگھرش کر رہے سسشتر بلوں پر حملہ نہیں کرنے کے انوروھ کو نہیں مان رہا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ سے لڑ رہے بلوں کو امریکہ کا سمرتھن حاصل ہے۔ امریکہ رکشا منترالے کے مطابق گروار کو روس سے انوروھ کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی روس نے دوسری بار حملہ کیا۔ امریکی رکشا منتری ایشٹن کارٹر نے کہا کہ یا تو روس نے جان بوجھ کر ایسا کیا یا پھر اس کے خفیہ تنتر میں دقت ہے۔ روس کے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ زمین پر اسلامک اسٹیٹ اور دوسرے لڑاکوں میں انتر کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل ایسوسیشن آف ایتھلیٹکس فیڈریشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈوپنگ کو لے کر روس کے کھلاڑیوں پر لگائے گئے پرتیبندھ جاری رہیں گے۔ یہ پرتیبندھ نومبر میں لگائے گئے تھے۔ اس سے روس کے کھلاڑی برازیل میں اس سال ہونے والے اولمپک کھیلوں میں حصہ نہیں لے پائیں گے۔ حالانکہ فیڈریشن نے بے داغ کھلاڑیوں کے اولمپک میں حصہ لینے کا راستہ کھولے رکھا ہے۔ روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن نے فیڈریشن کے فیصلے کو انیائےپورن بتایا ہے۔ انہوں نے کہا
ответственность должна быть всегда персонифицирована и никто не должен пострадать из тех
जिम्मेदारियां हमेशा ही प्रत्यक्ष होनी चाहिए। किसी को अन्य व्यक्ति के नियम तोड़ने की वजह से मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हम वर्ल्ड एंटी डोपिंग में अपने सहयोगियों के साथ बात करेंगे। मैं इस मामले में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ओर से सही प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा हूं। ये थे रूस के राष्ट्रपति के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटिश सांसद जो कोक्स की हत्या की जाँच कर रही पुलिस का कहना है कि मुख्य संदिग्ध के दक्षिणपंथी चरमपंथियों से संभावित संबंधों की जाँच की जा रही है। बीबीसी को जानकारी मिली है कि संदिग्ध के घर से नाजी साहित्य मिला है। पुलिस इसकी मानसिक स्थिति की भी जांच कर रही है। कॉक्स की गुरुवार को उनके संसदीय क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ब्राजील के रियो डे जेनेरो शहर के गवर्नर ने कहा है कि रियो के पास खाद्य सुरक्षा और यातायात जैसी जन सेवाओं के लिए धन की कमी है। रियो को ओलंपिक खेलों की मेजबानी करनी है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अलाबादी ने घोषणा की है कि करीब 4 हफ्तों चली लड़ाई के बाद देश की सेना ने फलूजा को अपने नियंत्रण में ले लिया है। प्रधानमंत्री का कहना था कि सेना का अगला लक्ष्य मोसूल को इस्लामिक स्टेट से मुक्त कराना है। टीवी पर दिए गए एक संक्षिप्त संदेश में उन्होंने कहा कि अभी चरमपंथी फलूजा में बहुत कम संख्या में मौजूद हैं, लेकिन जल्द ही उनसे भी निपट लिया जाएगा। फलूजा में चल रही लड़ाई में अब तक 60,000 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए वात्सल्य राय से।
4 हफ्ते तक चले जोरदार संघर्ष के बाद इराक की सेना ने फलूजा शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने फलूजा के इस्लामिक स्टेट से आजाद होने की जानकारी दी। अबादी ने कहा कि फलूजा के कुछ इलाकों में इस्लामिक स्टेट के लड़ाके मौजूद हैं, लेकिन सेना कुछ ही घंटों में उन्हें खाली करा लेगी। इराक के प्रधानमंत्री अबादी ने कहा,
لقد وعدنا بتحرير الفلوجة وقد عادت الفلوجة الى حضن الوطن।
हमने फलूजा को आजाद कराने का वादा किया था और हमने इसे दोबारा हासिल कर लिया है। हमारी बहादुर सेना फलूजा में दाखिल हुई और शहर के केंद्र पर अधिकार कर लिया। अब भी कुछ इलाके हैं जहां अगले कुछ घंटों में सेना का नियंत्रण हो जाएगा। मैंने सभी सरकारी संस्थानों को आम लोगों की मदद का निर्देश दिया है। ये थे इराकी प्रधानमंत्री के शब्द। फलूजा इराक की राजधानी बगदाद से पश्चिमी दिशा में करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस्लामिक स्टेट ने फलूजा पर जनवरी 2014 में कब्जा कर लिया था। ये शहर इस्लामिक स्टेट के लिए रणनीतिक लिहाज से अहम था। बगदाद में आत्मघाती हमलावरों को भेजने के लिए फलूजा में ही ट्रेनिंग दी जाती थी। अमरीकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने बताया कि फलूजा को मुक्त कराने के अभियान में अमरीका ने इराक की सेना को मदद मुहैया कराई थी। उन्होंने कहा,
ISF forces have entered the city. They are in control of a portion of the city. I think it's
इराक की सेना शहर में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने शहर के एक हिस्से को अधिकार में ले लिया है। ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि पूरा शहर उनके नियंत्रण में है। उन्होंने प्रधानमंत्री अबादी के निर्देश और अमेरिका के सहयोग से ऐसा किया है। इराक की सेना ने जिस मदद के लिए अनुरोध किया, हमने उन्हें वो मुहैया कराई। ये थे एश्टन कार्टर के शब्द। इसके पहले इराक की सेना ने फलूजा की मुख्य सरकारी इमारत पर अधिकार हासिल कर लिया। परिसर में इराक का झंडा लगा दिया गया। इराकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अमीर अल शामरी ने कहा, दुश्मन हिम्मत हार चुका है, उनके लड़ाके उनके काबू में नहीं रहे हैं, वो भाग रहे हैं। उनमें से कुछ हवाई हमलों या फिर जमीनी लड़ाई में मारे गए हैं। मुझे भरोसा है कि अगले कुछ घंटों में वो पूरी तरह टूट जाएंगे। ये थे लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अमीर के शब्द। फलूजा पर अधिकार हासिल करने के बाद इराकी प्रधानमंत्री अबादी ने कहा कि इराकी सेना की नज़र अब मोसूल पर है। मोसूल को इराक में इस्लामिक स्टेट का सबसे प्रमुख गढ़ माना जाता है।
माफ कीजिएगा, फलूजा में चल रही लड़ाई में अब तक 60,000 नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। ये थे वात्सल्य राय। जर्मनी की कोर्ट ने ऑस्विट्स के डेथ कैंप के एक पूर्व गार्ड को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें 1,70,000 लोगों की हत्या में सहयोगी होने का दोषी ठहराया है। पूर्व नाजी गार्ड को सजा सुनाने वाले जज ने कहा कि कैंप में यातना सह चुके लोगों को इस फैसले से न्याय की झलक मिलेगी। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे को एक बार फिर सुना रहे हैं वात्सल्य राय।
साल 1942 से 1944 तक नाजियों के दक्षिणी पोलैंड स्थित ऑशविट्स डेथ कैंप में गार्ड रहे राइनहोल्ड हैनिंग को 5 साल जेल में बिताने होंगे। जर्मनी के डेटमॉल शहर की एक कोर्ट ने 94 साल के हैनिंग को कम से कम 1,70,000 लोगों की हत्याओं में सहयोगी होने का दोषी ठहराया है। ऑशविट्स कैंप में नाजियों ने करीब 11 लाख लोगों की जान ली थी। इनमें से ज्यादातर यहूदी थे। 4 महीने तक चली सुनवाई के दौरान इस बात के कोई सबूत सामने नहीं आए कि हैनिंग ने कैंप में किसी की जान ली हो। उनके वकीलों ने भी दलील दी कि उन्होंने न किसी की जान ली और न ही किसी को पीटा, लेकिन अभियोजकों का कहना था कि वो नाजी तंत्र का हिस्सा थे और इस तरह उन्होंने बड़े पैमाने पर हुई हत्याओं में मदद की। मामले की सुनवाई के दौरान कैंप में रहे करीब 1 दर्जन लोगों ने हैनिंग के खिलाफ गवाही दी और अपने भयावह अनुभव बताए। फैसले के बाद अभियोजक एंड्रेस ब्रेंडल ने कहा,
Das Urteil ist für mich schon ein Meilenstein in der Aufbereitung der NS-Unrecht.
जर्मनी में सामाजिक न्याय के लिए काम करते हुए मेरे लिए ये फैसला मील का पत्थर है। ये बहुत अहम फैसला है। पहली बार ये निर्णय दिया गया है कि अगर किसी ने कैंप में काम किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये थे एंड्रेस ब्रेंडल के शब्द। सुनवाई के दौरान हैनिंग ने कहा कि उन्हें पता था कि कैंप में क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अप्रैल में कोर्ट को बताया था कि ये बात उन्हें बेहद परेशान करती है कि वो ऐसे आपराधिक संगठन का हिस्सा थे। कैंप में यातनाएं झेल चुके हैडी बॉम ने फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा,
I'd like to say how grateful and pleased I am to be here.
आज जब 70 साल बाद इंसाफ हुआ है तो फिलहाल मैं बताना चाहता हूं कि मैं कितना शुक्रगुजार और खुश हूं। श्रीमान हैनिंग को 70 साल पहले यह जानकारी नहीं थी कि सही क्या है। उन्हें अब भी पता नहीं है। उन्हें ताउम्र इस बात के साथ जीना होगा। ये थे हैडी बॉम के शब्द। सुनवाई के प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक हैनिंग व्हीलचेयर पर बैठे थे। ज्यादातर समय उनके चेहरे पर कोई भाव दिखाई नहीं दिया और वो चुप रहे। वो कोर्ट में मौजूद किसी भी शख्स से नजर मिलाने से बचते रहे। मामले की सुनवाई करने वाले जज ने कहा कि इस फैसले से कैंप में यातना सह चुके लोगों को न्याय की झलक मिलेगी।
पूर्व नाजी गार्ड को हुई 5 साल की कैद, जानकारी दे रहे थे वात्सल्य राय।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह के साथ। भारत प्रशासित कश्मीर में हुर्रियत के उदारवादी धड़े के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक ने जुमे की नमाज अदा करने के बाद कहा कि वो कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए गंभीरता से पहल करने जा रहे हैं। उनका कहना था कि अलगाववादियों ने मिलकर ये फैसला किया है। इस मुद्दे पर एक समिति बनाई जाएगी ताकि कश्मीरी पंडितों के साथ बातचीत शुरू की जा सके और उनकी वापसी के रास्ते तलाशे जा सके। उनका कहना था कि समिति में हुर्रियत के कट्टर और उदारवादी धड़े के लोग शामिल होंगे, साथ ही JKLF के प्रमुख यासीन मलिक भी सदस्य होंगे। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने मीरवाइज उमर फारूक से इस पहल पर बात की।
जहां तक कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है, उनकी वापसी का ताल्लुक है, इस मसले का कश्मीर के मसले के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कश्मीर का मसला देर हल हो सवेर हल हो, इसको हम कश्मीरी पंडितों की वापसी के साथ न जोड़ें। हम चाहते हैं कि ऐसे इनिशिएटिव्स हम लें, हम आगे आएं और ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हम लें जिससे कि हम कश्मीरी पंडितों को भी ये एहसास दिला सकें कि बिल्कुल यहाँ की मेजॉरिटी कमेटी ये चाहती है कि वो अपने घरों को लौट आएं और अपने इलाकों को लौट आएं। लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत से लोगों के दिलों में अभी भी खतरा है, खौफ है, और उसका बेहतरीन जो हमारे पास एक तरीका है वो ये है कि हम पहले मरहले पे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो रिस्टोर करें। कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में 2 बड़े इवेंट्स यहाँ पे हुए, एक तुलमुल का इवेंट हुआ जिसमें कि हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित आए, दूसरा गांधरबल में एक इवेंट हुआ तो उसमें भी बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित आए। तो गोया कि आहिस्ता आहिस्ता से वो अपनाइयत और वो जो आपसी भाईचारा है उसकी झलकें हमें फिर से देखने को मिल रही हैं। और हमने जो ऐलान किया जामा मस्जिद में, ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें कि हमने ये कोशिश की कि गिलानी साहब ने, यासीन साहब ने, मैंने, कि हम इस हवाले से एक कमेटी फॉर्म करें जो कि पहले मरहले पे जो यहाँ कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ हम बात करें, और उसके बाद हम जम्मू में जो कश्मीरी पंडित हैं कैंप्स में हैं उनसे बात करें, और फिर जम्मू से बाहर जो है उन सबसे बात हो।
जो PDP BJP सरकार कोशिश कर रही है, उन कोशिशों में क्या कोई आपको डिफरेंस नजर आता है? मतलब आपकी कोशिशों से वो अलग हैं, और क्या आपको लगता है कि उसमें कोई समस्या है?
इसमें 2 राय नहीं है कि कश्मीर की जो एक समस्या है वो अभी भी है, और अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन हर रोज जो है वो वारदातें होती हैं, मारे जाते हैं लोग, कंदिशें हैं, कर्फ्यू है, हाउस डिटेंशन है। तो इस सारे मामले में ये जरूरी है कि कश्मीरी पंडितों के मामले पे सियासत न की जाए। हम ही महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से PGP और PDP ये तासुर दे रहे हैं कि भाई वो बात कर रहे हैं जो है वो टाउनशिप्स की, कि हम कश्मीरी पंडितों को अलग रखेंगे, यहाँ के लोगों में शायद ये अभी ये एक एहसास है कि भाई ये तो ऊपर वही बात हुई कि जिससे खुद ही BJP और PDP अपने ही बुनियादी आईन को वो वायलेट कर रहे हैं। भारत का आईन तो ये कहता है कि भाई ये सेक्युलर मुल्क है, मुसलमान हिंदू साथ में रहें, तो अगर ये तो खुद उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि हुर्रियत ये चाहती है कि मुसलमान हिंदू सिख ईसाई जो है वो बिल्कुल साथ रहें। और अगर हम सेपरेट टाउनशिप्स की बात कर रहे हैं तो उससे मैं समझता हूँ कि तो दूरियां तो और भी बढ़ेंगी।
क्या आपको लगता है कि आप एक कंसेंसस पर पहुंच गए हैं जहां इस दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए अच्छी बात यह है कि पिछले कई अब हफ्तों से एक डिस्कोर्स शुरू हो गया है वादी में कि भाई कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर। और मुझे खुशी है कि पिछली बार जब कश्मीरी पंडित यहाँ वादी में आए तो हमसे भी मिले, कलेक्टिव भी मिले, इंडिविजुअल लेवल पर भी मिले, मुलाकातें भी हुई, और एक सेमिनार भी हमारा हुआ गिलानी साहब के घर पे, तो जहाँ पे मैंने तजवीज़ रखी थी कि भाई हमें एक मिलकर एक कमेटी बनानी चाहिए। और मुझे खुशी है कि गिलानी साहब ने, यासीन साहब ने, सब ने ये कहा कि बिल्कुल ये एक अच्छी तजवीज़ है। और हम ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं कश्मीर के मुसलमानों पे जरूर ये उंगली उठती है कि भाई वो कश्मीरी पंडितों को तहफ़ फराहम नहीं कर सके और वो यहाँ से चले गए, और ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के जहनों में है, कश्मीरी पंडित जो हैं वो हमारी घाटी का, हमारे वजूद का एक हिस्सा है।
कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर शुरू हुई पहल, ये थे मीरवाइज उमर फारूक। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने गुलबर्ग हत्याकांड मामले में 11 को उम्र कैद, 12 को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत में इस बात पर बहस हुई कि 11 दोषियों को उम्र कैद में कितने साल की सजा मिले। हालांकि अदालत ने सजा में मौत तक कैद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आपको याद होगा कि 2002 में गुजरात में हुए दंगों के दौरान अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में 28 फरवरी को कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोग मारे गए थे। गुलबर्ग सोसाइटी मामले में कल आई अदालत के फैसले पर हमारे सहयोगी जुबैर अहमद ने वरिष्ठ पत्रकार अमित सेन से बात की।
हिंदुस्तान में कई दंगे हुए हैं, सिखों के खिलाफ भी हुआ है 84 में। अभी तक हमको लगता है कि दंगों के इतिहास में सजाएं नहीं हुई, और जो कातिल हैं खुलेआम घूमते रहे, और जो उनमें से उनके मास्टर माइंड थे वो भी खुलेआम घूमते रहे। गुजरात 2002 के जो किलिंग्स हुई हैं, और एक जो 9 केसेस इम्पोर्टेंट केसेस थे, चाहे नरोदा पार्टी या नरोदा ग्राम, बिल्किस बानो का केस, बेस्ट बेकरी, गुलबर्ग सोसाइटी, इन तमाम में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ जस्टिस का प्रोसेस वर्क हुआ है और कातिलों को सजा मिली है। इनजस्टिस तो नहीं कहूँगा, हाफ जस्टिस कहूँगा।
मतलब ऐसे है कि जैसे कि ग्लास जो है, अगर उसका पानी आधा भरा हुआ है तो उसमें जो पीड़ित है वो कहेंगे आधा खाली है, और जो अक्यूज है वो कहेंगे आधा भरा हुआ है।
हाँ, मतलब आपने तो अफजल जैसे अफजल को हैंग कर दिया गया था। अफजल तो को तो कॉन्स्पिरेसी के भी हैंग किया था, अफजल का तो कोई रोल भी नहीं था पार्लियामेंट अटैक में, और कॉन्स्पिरेसी पे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्पिरेसी हैंग किया था, और जाके कलेक्टिव कॉन्शियंस को अपीस करने के लिए। यहाँ तो 69 इंडियन सिटीजन्स को, जो कि इनोसेंट हैं, जिनका कोई रोल नहीं है किसी उसमें, और जिनको आपने पब्लिकली मैसेकर किया है, मर्डर किया है।
तो ये मजबूरियाँ थी क्या, जो SIT जिसने इन्वेस्टिगेट किया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, उसको एविडेंस जुटाने में दिक्कतें हुई, या कोई दबाव भी किसी तरह का था?
गुजरात किलिंग्स इंडिया में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड वो है, एट्रोसिटी डॉक्यूमेंटेड है, करीब 42 या 45 तो रिपोर्ट्स हैं बड़ी बड़ी। ट्राइब्यूनल जो एक ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट है जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस इन्वॉल्व है,
लेकिन अदालत तो मानेगी वही जो SIT उनके सामने पेश करेगी, है ना?
हाँ, लेकिन अदालत को भी, अदालत तो जो मानेगी जो SIT उनको उनके सामने पेश करेगी, लेकिन इधर डिफेंस के लॉयर्स ने भी तो अपना टेस्टिमनीज पेश किया होगा।
क्या ये जो आज का फैसला आया है, और इस तरह के फैसले पहले आए हैं 9 केसेस में, कुछ में आए हैं कुछ में नहीं आए हैं, क्या ये रिफ्लेक्शन है मोदी सरकार के खिलाफ, जो उस वक्त की जो मोदी सरकार थी, चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के?
देखिए जिस तरह 1984 के दंगे अभी तक कांग्रेस के लिए एक श्राप या एक कर्ज की तरह है, एक कलंक है, वैसे ये उनके इनके जहन में और इनके 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 लाइफ में ये कलंक की तरह हमेशा रहेगा। ये जो खून के धब्बे हैं ये नहीं हट सकते।
कुछ लोग ये कहते हैं गुजरात में आप जाएं तो कि लेट्स मूव ऑन, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, तो क्या इस तरह के जो फैसले आते हैं उसमें मदद मिलेगी आगे बढ़ने में?
कमलनाथ के खिलाफ क्यों उन्होंने सब लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, BJP के लोग दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, क्यों? क्योंकि भूले नहीं हैं। अब कमलनाथ का उसमें रोल था कि नहीं था वो तो अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ है, हालांकि कमलनाथ का कोई रोल प्रूव नहीं हुआ है, तो भी लोग कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने संजय गांधी के ब्रिगेड में थे, वो इन्वॉल्वमेंट था, वो वहाँ पे थे, कोई उसका प्रूफ एविडेंस नहीं। लेकिन ये है कि वो आप एक पॉलिटिकल परसेप्शन की बात है, एक सोशल कॉन्शियंस की बात है, एक लार्जर कलेक्टिव कॉन्शियंस की बात है। यहाँ पे भी कलेक्टिव कॉन्शियंस है, अगर अफजल के इशू में कलेक्टिव कॉन्शियंस है तो यहाँ पे भी कलेक्टिव कॉन्शियंस होना चाहिए। सोसाइटी अगर ऐसे लेट्स मूव ऑन कर जाती तो अभी तक हम लोग जेनोसाइड के बारे में, हिटलर के फैशिज्म के बारे में नहीं बात कर रहे होते, या फिर अभी जर्मनी जो है माफ़ी नहीं मांग रही होती कि टर्की में आर्मेनियंस को मारा गया, एटसेट्रा।
वरिष्ठ पत्रकार अमित सेन गुप्ता से बात कर रहे थे जुबैर अहमद। और अब सीधे चलते हैं अहमदाबाद अंकुर जैन के पास। अंकुर, ये बताइए कि ये जो गुलबर्ग सोसाइटी वाली खबर है, इस खबर को कितनी प्रमुखता दी है वहाँ के अखबारों ने?
सुशीला जी, अहमदाबाद में तो ज्यादातर सभी अखबारों में ये फ्रंट पेज की खबर है। अहमदाबाद से प्रिंट होने वाला दिव्य भास्कर अखबार है, इसकी फ्रंट पेज खबर है कि गुलबर्ग हत्याकांड में जामीन दरमियान आरोपियों सामने कोई फरियाद न थी, इसलिए उन्हें फांसी की सजा नहीं। तो जज ने जो कहा था कल अपने फैसले में कि ये सभी जो अभियुक्त हैं, इनमें से किसी भी बेल के दौरान कोई आरोप नहीं लगा, इस वजह से इन्हें फांसी की सजा नहीं सुनाई गई है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस का जो अहमदाबाद एडिशन है उसमें भी ये खबर फ्रंट पेज पर है, और ये खबर है कि जो एहसान जाफरी कांग्रेस के MP जिनकी गुलबर्ग सोसाइटी में मृत्यु हुई थी, उन्हीं की फायरिंग से जो पूरी भीड़ थी वो गुस्सा हुई, और वो गुस्सा ही भीड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी को जला दी। इस खबर को फ्रंट पेज पे ले रखा है। वहीं गुजरात समाचार जो है वो लिखता है कि 11 आरोपियों को उम्र कैद और फांसी से बचे, जो कार्यकर्ता थे उन्हें आजीवन कैद, लेकिन जो दूरी संचार कर रहे थे कि जो इस दंगों के पीछे थे उन नेताओं को आजीवन महल मिला है, ऐसी खबर गुजरात समाचार में है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया का अहमदाबाद एडिशन कहता है कि 11 सेंटेंस टू लाइफ इन गुलबर्ग मैसेकर केस। वहाँ एक इंटरेस्टिंग खबर है ऑर्डर में कि आपको याद हो तो बरजानिया फिल्म जो थी जिसमें एक 13 साल के बच्चे के घूमने मिसिंग होने पर गुलबर्ग सोसाइटी से एक फिल्म बनी थी, तो कोर्ट ने कहा है कि उनकी जो माता थी रूपा मोदी उनकी बात, ये जो पूरी बात है वर्जन, वो सही नहीं है। और वहीं जो दूसरा गुजराती अखबार है संदेश, वो इसी खबर के बारे में उन्होंने टिप्पणी की अब कि आगे क्या होगा, क्या गुजरात सरकार हाईकोर्ट में अपील करेगी आरोपियों के फांसी की सजा के लिए। और सभी अखबारों में जो न्यायाधीश हैं उनकी, उन्होंने जो कहा था कि गुलबर्ग सोसाइटी सभ्य समाज का सबसे काला दिन है
जी।
उसी खबर को तवज्जो दी है फ्रंट पेज पे, लार्जली यही खबर है। इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स में एसआर को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, एसआर के एम्प्लॉय की फोन टैपिंग की खबर को भी फ्रंट पेज पे लिया गया
जी। बहुत बहुत धन्यवाद समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका। ये थे अहमदाबाद से अंकुर जैन।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या है कैराना का सच? उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले अचानक कैराना से पलायन का मुद्दा क्यों उछला? क्या वाकई वहां दो समुदायों के बीच तनाव है, या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में वोट हासिल करने की ये एक रणनीति है? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 18 जून शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811 7000 या 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो श्रोताओं, आज इंडिया बोल में भाग लेना ना भूलिएगा। और अब बात फिल्मों की। कल दो फिल्में अभिषेक चौबे निर्देशित बहुचर्चित उड़ता पंजाब और नागेश कुकनूर की धनक फिल्म रिलीज हुई। सुनिए फिल्म समीक्षा अर्णव बनर्जी से।
ऑर्डर ऑर्डर।
फिल्मों में आपने अदालत का सीन तो बहुत बार देखा होगा।
तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोर्ड।
वेल, इस बार तो फिल्म ही कोर्ट चली गई। आज आ गई फिल्म उड़ता पंजाब।
और मिलना है टॉमी सिंह से।
ये फिल्म कैसी लगी ये पता लगाते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं अर्णब बैनर्जी। अर्णब, कितनी उड़ी उड़ता पंजाब?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पंजाब की जो छवि है हमारे दिमाग में एक ऐसी है, जो ऐसा एक प्रदेश है जो कि हरियाली से जुड़ा हुआ है, एक बहुत ही जिसने तरक्की की है, और पंजाबियत जो है उसकी भी हम बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि बहुत निडर होते हैं और कोई भी चीज पंजाब से जुड़ी हुई होती है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स जैसे हम कहते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी छवि तैयार करता है। लेकिन पिछले हम 20-25 साल से देख रहे हैं कि ऐसी एक खामी है उसमें जो कि उसको खा गई है, यानी यूथ जो है पंजाब का ड्रग के चपेट में इस तरह आ चुका है कि बहुत सारी लीड स्टोरीज बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने करी हैं, टेलीविजन में भी हुई हैं, और हम सब इससे वाकिफ हैं। तो उस बिगड़ी हुई छवि को उड़ता पंजाब ने दिखाने की कोशिश की है और मुझे लगता है बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं।
शाहिद की एक्टिंग कैसी थी?
टॉमी सिंह, शाहिद कपूर बने हैं, वो रॉकस्टार हैं, ड्रग के चपेट में आ चुके हैं। आलिया भट्ट एक बिहारी, हालांकि वो हॉकी प्लेयर थी, लेकिन किसी तरह वो भाग के पंजाब आ जाती हैं, वहाँ पे वो उसके साथ बुरा होता है और वो खेतों में काम करने लगती हैं। दूसरी ओर करीना कपूर हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं और डॉक्टर हैं, ड्रग एडिक्ट्स को संभालती हैं और उनके साथ उनको ट्रीटमेंट देती हैं। तो सांझ एक ASI इंस्पेक्टर हैं, कि उनका भाई है जो कि बुरी तरह ड्रग का शिकार है। तो ये चारों कहानियां जो हैं कहीं ना कहीं जुड़ी भी हुई हैं लेकिन अलग अलग ट्रैक्स पे चल रही हैं। शाहिद कपूर का रोल बहुत डिफिकल्ट रोल है, यानी एक रॉक स्टार है और वो अपने आप को बहुत बड़ा खुदा समझता है, लेकिन वो ड्रग की वजह से अपने आप को बर्बाद कर देता है। तो ये चारों कहानियां एक जगह जब मिलने लगती हैं उस समय कुछ ट्रैक्स ऐसे हैं, जैसे जबरदस्ती एक रोमांटिक एंगल डालना करीना कपूर और दिलीप दोसांझ के बीच में, वो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन फिल्म इतनी रियलिस्टिक और इतनी हार्ड हिटिंग है, उस लिहाज से उड़ता पंजाब एक बहुत कामयाब फिल्म है।
अर्णब, आप एक फिल्म नहीं दो फिल्म देखकर आए हैं, दूसरी फिल्म के बारे में कुछ बताइए।
दूसरी फिल्म धनक काफी सारी फेस्टिवल्स में धमाल मचा के आई है। धनक यानी रेनबो दो बच्चों की कहानी है जो यतीम है, अपने चाचा और चाची के यहाँ पले हैं और चाची का व्यवहार उनके प्रति कुछ ठीक नहीं है। लड़का किसी कारण से आंखें खो बैठता है और उसको बस शाहरुख खान से मिलना है। बहन उसकी शाहरुख की फैन है और वो खुद सलमान का फैन है, तो वो ठान लेते हैं कि क्यों ना शाहरुख खान से पर्सनली मिला जाए और उनसे मदद मांगी जाए। तो ये जो पूरी कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो नैरेटिव है मुझे लगता है कुछ बनावटी बन जाता है, यानी जगह जगह कुछ ट्विस्ट देना कुछ अटपटा सा लगता है और कुछ हद तक ये बहुत ही ज्यादा अननेचुरल भी लगता है।
आप इन दोनों फिल्मों को कितने स्टार्स देते हैं?
उड़ता पंजाब को मैं 5 में से 3.5 दूंगा और धनक को मैं 5 में से 1.5 दूंगा।
जनता से जानते हैं कि उन्हें कैसी लगी उड़ता पंजाब।
इट्स अ वेरी गुड फिल्म।
जितनी कंट्रोवर्सी हो रही थी कि ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, बट इट्स अ रियलिटी।
शाहिद एंड आलिया वर माइंड ब्लोइंग। डायरेक्शन वाज ऑसम। सुपर्ब। बेजोड़। खाड़ू।
बात आपकी और मेरी नहीं है, ये बात है देखो मैं हूं आमने और तुसी हो सामने। पुर्रा 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 है सब दिल।
फिल्म समीक्षक अर्णव बनर्जी से बात करी थी सुमिरनप्रीत कौर और अब सुन लेते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। पिछले दिनों जिम्बाब्वे को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज में 3-0 से हराने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम 2020 सीरीज खेलने के लिए तैयार है और आज 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच हरारे में खेला जाएगा। इससे पहले समाप्त हुई एक दिवसीय सीरीज में तो जिम्बाब्वे का ये हाल था कि वो पूरे 50 ओवर भी किसी मैच में नहीं खेल सकी। बल्लेबाजी में भारत के केएल राहुल ने एक दिवसीय सीरीज में 1 शतक की मदद से 196 रन बनाए और वो मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल छाए रहे। विराट कोहली के कोच और पूर्व क्रिकेटर राजकुमार शर्मा भी मानते हैं कि ये दोनों गेंदबाज इस सीरीज की खोज रहे।
डेफिनेटली बुमराह तो आप देखें पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ऐसे बॉलर काफी समय बाद मिले हैं हिंदुस्तान को जो डेथ ओवर्स में अच्छे यॉर्कर्स डालते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्लो और वन बड़े अच्छा मिक्स करते हैं। और वहीं पे युजवेंद्र चहल ने एक बड़ी अच्छी आशा की नई किरण मैं कहूंगा दिखाई है, अच्छा एक प्रॉमिस शो किया है इस यंगस्टर ने और अच्छा टेम्परामेंट है उनका, अच्छी लाइन पे बॉल डालते हैं और फ्लाइट करने से नहीं घबराते, तो ये एक अच्छी खोज है मैं कहूंगा इस टूर की।
वहीं भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को तो एक भी मैच में बल्लेबाजी करने का अवसर तक नहीं मिला। वैसे केएल राहुल के अलावा अंबाती रायडू ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जमकर बल्लेबाजी की और पहले मैच में नाबाद 62 और दूसरे मैच में नाबाद 41 रन बनाकर अपना दमखम दिखाया। इतना ही नहीं फैज फजल ने भी नाबाद 55 रन बनाकर मौके का पूरा फायदा उठाया। अब देखना है कि एक दिवसीय सीरीज में भारत से करारी हार के बाद जिम्बाब्वे 2020 सीरीज में कैसा प्रदर्शन करता है। उधर इन दिनों बाकू में आयोजित की जा रही विश्व ओलंपिक क्वालिफाइंग मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के मनदीप जांगड़ा को हार का सामना करना पड़ा। मनदीप जांगड़ा को स्पेन के युयुबा सिसुखो निदियाय ने 2-1 से हराया, लेकिन साल 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मनोज कुमार 64 किलो भार वर्ग में पहले दौर का मुकाबला जीतने में कामयाब रहे।
खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी के मुताबिक इराक की सेना ने फलूजा शहर को इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण से मुक्त करा लिया है। इराकी सेना ने इसके लिए करीब 4 हफ्ते पहले अभियान शुरू किया था। अमरीका ने आरोप लगाया है कि रूस दक्षिणी सीरिया में इस्लामिक स्टेट से संघर्ष कर रहे सशस्त्र बलों पर हमला नहीं करने के अनुरोध को नहीं मान रहा है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने फैसला किया है कि डोपिंग को लेकर रूस के खिलाड़ियों पर लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे अन्यायपूर्ण बताया है। ब्रिटिश सांसद जो कॉक्स की हत्या की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि मुख्य संदिग्ध के दक्षिणपंथी चरमपंथियों से संभावित संबंधों की जांच की जा रही है। ब्राजील के रियो डो जेनेरो के गवर्नर ने कहा है कि रियो के पास खाद्य सुरक्षा और यातायात जैसी जन सुविधाओं के लिए धन की कमी है। रियो में अगस्त में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। विश्व भारती में चलो रियो की चौथी कड़ी लेकर आएंगे, तब तक दीजिए इजाजत।